नमस्कार दोस्तों, आज से हम बात शुरू करेंगे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे नेहरू को प्रचारित करने का सफल प्रयास किया गया जिसका ताल्लुक उस नेहरू से तो बिल्कुल नहीं था जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 30 साल से ज़्यादा संघर्ष किया और उस 30 साल में से वे करीब 10 साल जेल में रहे। भारत को जी जान से प्यार करने वाले नेहरू को एक शत्रु के रूप में खड़ा किया गया। ऐसे तथ्य और तर्क गढ़े गए ताकि लोग नेहरू से नफरत करने लगें जिनसे नेहरू बेपनाह मोहब्बत करते थे। लोगों की बेहतरी में राष्ट्र के विराट को देखने वाले नेहरू को सांप्रदायिक राजनीति मुसलमान और मुस्लिम परस्त बताकर छोटा साबित करना चाहती है। ऐसा करने वाले लोगों को पता है कि सांप्रदायिकता को लेकर संघर्ष करने की प्रेरणा आजाद भारत के किसी नेता में साफ साफ है तो वे नेहरू हैं। नेहरू का नाम ही सांप्रदायिक राजनीति के वजूद को चुनौती है, इसीलिए सांप्रदायिक टोलियों में तरह तरह से नेहरू को खलनायक साबित किया जाता रहा है, कभी पटेल के खिलाफ तो कभी बॉस के खिलाफ। ऐसा लगता है कि नेहरू ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कम और पटेल और बॉस के खिलाफ ज्यादा खड़े थे। राजमोहन गांधी ने सरदार पटेल की जीवनी पटेल अ लाइफ लिखी है और उसके अंदर वो एक प्रसंग का जिक्र करते हैं। सरदार पटेल अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए जब दिल्ली छोड़कर के जा रहे थे तो पटेल ने एनवी गाडगिल से कहा कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, तुम मुझसे एक वादा करो। और जब गाडगिल हाँ कहते हैं तब सरदार अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में लेके कहते हैं कि पंडित जी के साथ जो भी मतभेद हो उनको अकेला कभी मत छोड़ना, हमेशा उनके साथ रहना। 12 दिसंबर की सुबह पटेल मुंबई के लिए रवाना होते हैं और 15 दिसंबर 1950 को भारत का ये महान सपूत इस मिट्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। क्या आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेहरू पटेल को लेकर फैलाए जा रहे किसी भी लेख में ऐसे प्रसंग देखे हैं? कौन लोग हैं जो असहमति सहमति के बीच दो नायकों की मित्रता को शत्रुता के रूप में स्थापित कर रहे हैं? आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां पटेल और नेहरू एक दूसरे के बगैर नहीं समझ सकते। इन्हें एक दूसरे से अलग करने और एक दूसरे का शत्रु बताने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि दोनों ने ही बार बार बताया और चेताया कि सांप्रदायिकता की जड़ें कहाँ हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मूर्ति के जरिए पटेल को मिथक में बदला जा रहा है और अफवाहों के जरिए नेहरू को मिथ्या में, जबकि दोनों भारत के इतिहास की ऐसी हकीकत है कि उन पर धूल नहीं जम सकती। मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियमित रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हर संस्थान और हर पहचान को समाप्त करने या कमजोर करने की पुरजोर कोशिशें करते रहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख संस्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नेशनल हेराल्ड, तीन मूर्ति म्यूजियम, योजना आयोग इत्यादि हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी और आरएसएस नेहरू की छवि को धूमिल करने के लिए झूठे और नकली तथ्यों को अपने गैर जिम्मेदार सोशल मीडिया विभाग के द्वारा आम जन में फैलाते रहते हैं और बहुत से लोग जो तथ्यों की छानबीन नहीं करते वे इन सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं। साधारण रूप में लोग इसे मात्र राजनीतिक लाभ के लिए नेहरू के वंशजों पर हमले के रूप में देखते हैं जो वर्तमान में कांग्रेस के नेतृत्व में है। ये काफी हद तक सही है कि नेहरू की छवि खराब करने से बीजेपी और आरएसएस को राजनीतिक लाभ प्राप्त होता है, भले ही एक तुच्छ प्रवृत्ति या ऊंची राजनीति क्यों ना हो, लेकिन नेहरू की विरासत को समाप्त या कमजोर करना ये इसकी कोशिशों के पीछे का वास्तविकता कुछ और ही है। और वास्तविकता यह है कि बीजेपी और उसे पैदा करने वाली मूल संस्थाओं जैसे आरएसएस या हिंदू महासभा के पूरे इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे वह गर्व के साथ भारत के महानतम नेताओं में से एक नेहरू के समकक्ष रख सके। भाजपा और आरएसएस के जो ट्रोल सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं या जो नेता झूठ बोलते हैं उनके लिए किसी शायर ने खूब लिखा है, कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग, करते हैं बरगद की बातें, गमलों में उगे हुए लोग। धन्यवाद। जय हिंद।